प्राण के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है।
ओम शांति। फिर से बोलो ओम शांति। हम सब बाबा के बहुत बहुत लाडले, बाबा के दिल पसंद, बाबा के दिल में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषणों में पवित्र कुमार, ऐसे ऊंचे सम्मान में रहने वाले बाबा के बच्चे, अपनी इस अलौकिक जीवन में परमात्मा शिक्षाओं से अपने को श्रृंगार करते रहें, वही उनकी सुरक्षा है। तो आप सबके बहुत जिज्ञासा युक्त प्रश्नों को पढ़ करके मुझे संकल्प आया कि बाबा ऐसे प्रश्नों में मुझे क्यों नहीं लाया, मेरे ऐसे प्रश्न क्यों नहीं उठे कभी। हो सकता है आप सब कहेंगे मैं अपनी लौकिक कर्म क्षेत्र पर लौकिक जवाबदारियों के बीच में हूं और दुनिया के हिसाब से बुद्धिमान हूं, पढ़ा लिखा हूं, और बुद्धिमान हर बात को बहुत परखता है, समझता है, उसके बाद उस पर कदम रखता है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि मीठे बाबा ने जो ज्ञान और योग की पालना दी है, जिसने ज्ञान की गहराइयों को, ज्ञान के रहस्यों को, हर राज को समझा है, उसके कई प्रकार के प्रश्न अपने आप हल हो जाते हैं। जैसे आपको आपके जो प्रश्न थे, किसी ने पूछा है कि दादी जी बीमार पड़ी, वो तो योगी तू आत्मा देवी देवी समान है, उनको इतने ब्राह्मणों के सकास की क्या जरूरत थी। किसी ने एडवांस पार्टी के बारे में बहुत सारी बातें पूछी हैं, श्री कृष्ण के जन्म के बारे में पूछी है, किसी ने अपनी धारणाओं और अपनी निजी समस्याओं के बारे में पूछी है, और कोई बाबा के कोई नए नए लाल हैं, उन्होंने ड्रामा के रिपीटेशन के बारे में पूछा है, कोई ने इविल स्पिरिट्स के बारे में पूछा है, कोई ने वास्तु के बारे में पूछा है, बहुत सारे वैरायटी और बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, हर एक के मन में हैं। जानने के लिए प्रश्न करना आवश्यक होता है। मैं समझता हूं कोई इन प्रश्नों में उलझता तो नहीं होगा। कुछ एक बातें हैं जो बाबा ने भी अभी तक हमारे आगे स्पष्ट नहीं की हैं, और हम अपना चिंतन कभी भी बाबा की बताई हुई बातों के अलावा प्रस्तुत नहीं करते। जैसे बाबा ने अभी तक श्री कृष्ण के जन्म के बारे में, रहस्य के बारे में कोई ने इतना रमणीक प्रश्न किया है कि इतने सब आत्माएं अगर एक साथ उतरेंगी तो उनको जन्म कौन देगा, प्रश्न होगा 9 लाख अगर उतरेंगे तो उनके 18 लाख तो माँ बाप ही चाहिए, तो क्या इतने सब बचेंगे? तो जरूर, जब अंत समय आएगा तो ऐसा थोड़ी है महाप्रलय हो जाएगी। बाबा कई बार कहते हैं जब बहुत भयानक विनाश होगा तो कोई कोई दीपक एक एक किलोमीटर, दो दो किलोमीटर के दूर जलते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारी आत्माएं जो एडवांस पार्टी में इतनी फास्ट गति से गई हुई हैं, वो सतयुगी देवताओं को उसकी रचना को संपन्न करने में सहयोग देंगी। ये सभी आत्माएं कोई वापस एक साथ बाबा के साथ नहीं जाएंगी, अगर साथ चली जाएंगी तो सतयुग की शुरुआत कैसे होगी? ये सब समझने की और अंदर से क्वेश्चन न करना, क्वेश्चन पर क्वेश्चन ही उठाओ, लेकिन जो होगा हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, क्योंकि बाबा ने कोई स्पष्ट बात तो मुरलियों में बताई नहीं है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। विचार ही किया जा सकता है कि ऐसा होगा, तो इसलिए ऐसे ऐसे प्रश्नों में उलझना नहीं। बाबा को बताना होगा तो बता देगा, अभी बाबा गया थोड़ी है, हमारे बीच में ही है। अव्यक्त रूप में हम बच्चों की इतनी पालना इतने वर्षों से कर रहा है, और कई रहस्य अंत समय में अपने आप स्पष्ट होते हैं, जब अंतिम समय आएगा तो स्पष्ट हो जाएंगे। इसलिए इन ज्यादा प्रश्नों में उलझने की जरूरत नहीं है। हमारा एक मुख्य लक्ष्य है, हमारी पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है आत्मा को संपूर्ण सतोप्रधान, आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना। हम सब उसके राही हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही हम भिन्न भिन्न प्रकार के नियमों का, मर्यादाओं का दृढ़ता के साथ पालन करते हैं। और जो जितना पालन करेगा, कोई बंधन नहीं है, कोई हट नहीं है, लेकिन जो जितना करेगा उतना पाएगा। रेस है, पढ़ाई है, लेकिन पढ़ने वाले कभी ये नहीं सोचते कि मैं फेल हो जाऊं। हमेशा लक्ष्य रखते हैं कि हम भी रेस करें, दूसरों की तरह हम भी अध्ययन करें, हम भी पास होकर के दिखाएं। बाकी 8 और 108 की जो माला है वो तो निश्चित बनी हुई होती है और उसके अनुसार उनका रेस, उनका पुरुषार्थ भी चलता है। हम भी उसके दौड़ में हैं और बाबा कई बार कहते हैं अगर आप बच्चे भी दौड़ करके पहुंच गए तो मैं माला की लड़ियां बढ़ा दूंगा। लड़ियां ही तो बढ़ानी है बाबा को, और क्या करना है? तुम फर्स्ट डिवीजन में आके तो दिखाओ। विष्णु के गले में कोई एक माला थोड़ी पड़ी हुई है, कई लड़ियों की माला पड़ी हुई है। तो हम सब रेस करें, रेस में पीछे नहीं हटो और कभी कोई भी प्रश्नों में उलझो नहीं, क्योंकि कई आत्माओं के अपने अपने हिसाब किताब हैं, पिछले जन्मों के भी हिसाब किताब हैं। और अगर किसी ने ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत नहीं किया है, उसके आगे अनेक प्रकार की बातें आती हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न और अनेक प्रकार की समस्याएं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, शायद आप हमारी क्लासेस सुनते होंगे, कि जिस स्थान पर रूहानियत का वातावरण नहीं है, जिस स्थान पर योग तपस्या की लहर नहीं है, उस स्थान पर आए दिन नए नए विघ्न आते हैं। आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज कोई स्टूडेंट डिस्टर्ब हो गए, आज कहीं इविल स्पिरिट्स का वार हो गया। जरूरत किस चीज की है? और हम सब बाबा के बच्चे, बाबा के स्थापना के कार्य में स्नेही और सहयोगी हैं। मेरा एक शुरू से लक्ष्य रहा है मधुबन यज्ञ में रहते हुए कि हम बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे हैं, और रक्षा केवल स्थूल ताकत से नहीं की जा सकती। रक्षा का एक बहुत सुंदर पहलू है और वो है एक बहुत सुंदर शुद्ध संकल्पों का, शुभ भावनाओं का आभा मंडल बनाना, यज्ञ के किले को मजबूत करने का बड़ा अच्छा साधन है। अपनी सुरक्षा के लिए बाबा की इस शिक्षा को कभी नहीं भूलना कि बच्चे सदा शुद्ध संकल्पों में रमण करो, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करने का अभ्यास करो। दिखाई दे रहा है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये बड़े ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, आपको कितना दिखाई देता होगा, मैं समझता हूं जितना हम लोग देखते हैं, हेडक्वार्टर में बैठे हैं, बहुत कुछ दिखाई देता है। लेकिन बाबा कहता बच्चे तुम्हें देखने की ड्यूटी मैंने नहीं दी है, इसको देखेंगे तो कभी भी अपनी स्थिति बना नहीं सकेंगे। अपनी स्थिति बनाने के लिए हम बाबा के घर में आए हैं, बाबा ने हमें अपना बनाया है, हमें चुना है, हम सब एक लक्ष्य रख करके आगे बढ़ें कि मुझे अपनी स्थिति बनानी है। और अपनी स्थिति बनाने का बड़ा अच्छा साधन है अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट माना अपना मनन करो, अपना चिंतन करो, अपनी तपस्या करो, अपने ढंग से चलो। श्रीमत की बाउंड्री बाबा ने हम सब के लिए खींच करके दी है, चाहे वो समर्पित है, चाहे वो अपने लौकिक जवाबदारियों के बीच में रह रहा है, चाहे वो समर्पित सेंटर्स की बहनें हैं, भाई हैं, चाहे मधुबन वाले हैं, सबके लिए बाबा ने एक जैसी श्रीमत दी है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग श्रीमत वहां पर हम यूज करते हैं जहां पर कई प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कल एक बात प्रश्नों में आई थी, कई कुमारों ने प्रश्न लिखा था, मेरे को अपनी माँ के हाथ का खाना पड़ता है, वो पवित्र नहीं रहती है, मैं क्या करूं। आप सब समझदार हो, जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस माँ ने बड़ा किया है, जिस माँ ने पढ़ाया लिखाया है, अगर कोई ऐसी परिस्थिति है और आप उसको एकदम ठुकरा दोगे तो समाज ज्ञान का विरोध करेगा, आपका नहीं करेगा। कहिए ब्रह्मा कुमारियां क्या सिखाती हैं, ये कौन सा ज्ञान है, जिस माँ ने इतना बड़ा किया उसके हाथ का ही नहीं खाता है। युक्ति से मुक्ति पाओ वो अच्छी बात है, समय लगता है उसमें, लेकिन जाते ही टकराव की स्थिति पैदा नहीं करो। समझदार हो, समझ से चलो, बाबा के ज्ञान की ग्लानी न हो। हमारी किसी भी एक्टिविटी से ऐसे नहीं हम उनके हाथ का खा लेंगे तो हम पतित हो जाएंगे। योग युक्त होकर के माँ को समझा करके, आज अगर आप बीमार हो, आज कोई आपको डॉक्टर सलाह देता हो ये चीज नहीं खानी है, तो माँ कभी भी जबरदस्ती ऐसा भोजन नहीं कराएगी। अगर उसको आप प्यार से कहेंगे माता जी आप नहा दो के स्नान पानी करके आप थोड़ा सा लहसुन प्याज अगर नहीं डालेंगी तो हमारा मेडिटेशन जो है, जो हम योग करते हैं उसमें हमको मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा, हम आपके हाथ का जरूर खाएंगे लेकिन आप इस विधि से बना के देंगी। तो कोई कोई की प्रॉब्लम, हर एक के लिए श्रीमत नहीं है, ये भी ध्यान रखना, कई लोग इसमें अलबेले हो जाते हैं। जो कर सकते हैं, जो अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उनके लिए बात नहीं है, लेकिन जो माता पिता के अंडर डिपेंड करते हैं, अब कोई ऐसे हैं जिनके पास भाभियां ही घर में हैं, वही खाना बनाती हैं, आप विरोध करके झगड़ा करके ज्ञान को बदनाम मत करो, झुक करके समझ करके सम्मान दे करके युक्ति से मुक्ति पालो, अच्छी बात है। लक्ष्य जरूर रखो कि इससे हमें मुक्त होना है, लेकिन टकराव करके नहीं। कभी भी लौकिक परिवार को मुख से ज्ञान देना वो कभी आपकी बात सुनेंगे नहीं है, लेकिन अगर आप अपने चरित्र को, अपने जीवन को इतना सादगीपूर्ण, इतना अच्छा बना लेंगे, जो आपकी पहले की एक्टिविटी थी, जो आपकी पहले की संगत थी, जो पहले का आपका रहन सहन था, खान पान था, व्यवहार था, यदि उसमें परिवर्तन आ गया, आपकी वाणी के अंदर मधुरता आ गई, जीवन में सरलता आ गई, चेहरे पर दिव्यता आ गई, तो मैं समझता हूँ उसका प्रभाव लौकिक सेवा का बहुत अच्छा साधन है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मधुर वाणी का प्रयोग करो, शुभ भावनाओं का प्रयोग करो, आपके सब सहयोगी बनेंगे, सब मददगार बनेंगे, आप जैसा कहोगे वैसा वो करने लगेंगे, लेकिन पहले हमें बदलना होगा। हम अपने को बदलने की बजाय, अपनी पवित्र जीवन बनाने की बजाय, अपनी ऊंची धारणाओं में चलने की बजाय टकराव की स्थिति पैदा करेंगे तो घर, मोहल्ला और सब विरोध करना शुरू कर देंगे। इसलिए बहुत युक्ति से चलो, बहुत स्नेह से संबंध बना करके अपने आप को सेफ भी रखो और अपने रिकॉर्ड को अच्छे से अच्छा बनाओ। इसलिए प्रश्नों की उलझन में अगर जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे छोटे छोटे, बहुत पाई पैसे के प्रश्न कहते हैं, उठ रहे हैं, पूछ रहे हो, ये हो रहा है, ऐसा होता है। अब कोई ने महिमा की, हम कहते चलो ये बाबा की महिमा हो गई, अब उसके लिए प्रश्न कर दिया, अगर कोई मेरी निंदा करे तो मैं क्या करूं। ये प्रश्न आज अभी अभी शायद आप लोगों ने पूछा शारदा बहन से, और बाबा की निंदा कैसी कितनी लोगों ने की है, और बाबा हमेशा कहता है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। अगर निंदक नहीं होगा तो अपने को पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा। याद होगा आपको एक बार, जो पुराने कुमार हैं उनको पता होगा, हमारे जगदीश भाई ने बड़ा रमणीक लेख लिखा था, भगवान तुम मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, मैं दुश्मनों से निपट लूंगा। समझे इस बात को क्या कहना चाहता हूं। मित्र जो हैं, जो आज दोस्त मंडली बन जाती है, कभी कभी नेगेटिव बातों की चर्चा के लिए हम अपने मित्र बना लेते हैं। कोई छोटी सी बात देखी, एक व्यक्ति नेगेटिव है, दूसरा उसके साथ मिल गया, दूसरे को और तीसरे को मिला लिया, चार को मिला लिया, और उस वातावरण में और नेगेटिविटी फैलने लगती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और उसके कारण सब निंदक बनने लगते हैं, सब प्रकार से विघ्न आने लगते हैं। इसलिए कुमार जीवन में एक बात का बहुत ध्यान रखना, कभी भी किसी के संग के रंग में नहीं आना। अगर कोई ऐसी कोई भी बात व्यर्थ कर रहा हो, नेगेटिव कर रहा हो, बड़ों के विपरीत कर रहा हो, मुरली के अंदर कोई अपनी नुक्स और प्रश्न उठा रहा हो, प्लीज ध्यान रखो, ये संग ठीक नहीं है। संग तारे कुसंग डुबोए, सदा ये स्मृति में रखना कि हमें ऐसी संगत नहीं करनी है जो कोई भी प्रकार से ज्ञान योग के सिवाय चर्चा करता है। तो अगर किसी भी प्रकार की बातें आपको सुनाता, ऐसा हुआ आपने, पता है आपको इतनी बड़ी बात हो गई, अरे उस बहन ने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और आपने हां में हां मिला दी, टेका दे दिया, और वो बात धीरे धीरे एक के बाद दूसरे के कान तक गई, दूसरे से तीसरे तक गई। कई बार ऐसे होता है कि बात इतनी छोटी सी होती है लेकिन वो विस्तार होते होते एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती है, और कहते हैं अगर उस पहाड़ की छानबीन की जाए तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। बात कुछ भी नहीं होती लेकिन वो बात को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक आप पहुंचाएंगे तो आप थोड़ी लगा देंगे मिर्च मसाला, उसने दूसरे तक पहुंचाया तो उसने और थोड़ा लगा दिया, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। इसलिए प्लीज ध्यान रखो, हम अलौकिक लोग हैं, अल्लाह लोग हैं, अभी हमें कोई भी व्यर्थ और व्यक्त बातें न सुननी है, न देखनी है, न बोलनी है। सिर्फ इस पर आप लगाम लगा लो, सब अच्छा होने वाला है। बाबा बैठा है, बाबा की रचना है, बाबा की स्थापना का कार्य है, हमारी सफलता तो निश्चित है, विजय निश्चित है, हुई पड़ी है। इसलिए कभी भी संकल्पों में भी हिलना डुलना नहीं, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अगर पहाड़ जितनी बात भी आती है ना तो भी बाबा मुस्कुराता है, बच्चे कुछ नहीं होगा, भगवान बैठा है ना, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, उसका सब स्थापना का कार्य है, हम क्यों हिलें। तो इस बात को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो कि अगर हमको कोई बात सुना के चला जाता है तो मुझे दूसरे तक नहीं पहुंचानी है। मुझे कई बार लोग प्रश्न करते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं, कि आप लोग, आप पर्सनल मेरे से कहते हैं, आप दादियों के इतना नजदीक कैसे आ गए, जबकि आप जितनी किसी की जितनी पढ़ाई है उतनी मेरी पढ़ाई नहीं है, कोई ऐसी योग्यता नहीं है, कोई मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं देखी है, और सारे विश्व को पढ़ाने की सेवा बाबा ने मुझे दे दी है, मुरली ही दे दी हाथ में। दादियां जो सारे विश्व का देख देख संचालन कर रहे हैं, उनके पत्र व्यवहार का उत्तर देना मेरे को दे दिया। किस विधि से हम, किस आधार से आ गए, कोई होगा सर पिछले जन्मों का पुण्य ऐसा? सिर्फ एक ध्यान रखता हूं, चाहे कितनी भी सीक्रेट यज्ञ की बातें मुझे पता हो, लेकिन मेरे द्वारा तीसरे तक नहीं जानी चाहिए, विस्तार न होना चाहिए, कोई भी व्यर्थ चर्चा मेरे द्वारा मुख से न निकले, क्योंकि मैं बाबा का इतना राइट इंस्ट्रूमेंट बनूं, मैं सुधारने के लिए आया हूं, बिगाड़ने के लिए नहीं। मान लो आज आप मेरे को अपनी बात, अपने घर की बात, अपने दिल की बात कोई सुना के जाए, मेरा ये फर्ज नहीं कहता है कि मैं आपके दूसरे सेकंड को, टीचर को, आपके दूसरे साथी को उस बात का वर्णन करके बताऊं। आपने मुझ में फेथ रखा है, कल एक प्रश्न आपने दिया था, अगर मैं किसी पर फेथ रख के अपनी बात सुनाता हूं वो दूसरे तक फैल जाती है, बहुत खबरदार रहना, बहुत समझ के चलना, क्योंकि कई बार हमारी एक छोटी सी बात आपने लिख दिया, आज बहन जी मुझे स्वप्न गलत आ गया, और बहन जी ने उसको भारी रूप दे दिया, या उसने तो चलो समा भी लिया, दूसरी बहन को पता चल गया, वो आपको उसी दृष्टिकोण से देखने लगेगी कि इसकी वृत्ति खराब है, इसकी दृष्टि खराब है, इसको ऐसा होता है, इसको ऐसा होता है। इसलिए हर बात हर एक को नहीं सुनाई जाती है, सब जगह नहीं फैलाई जाती है। वैसे भी कहते हैं किचड़े को किचड़े बॉक्स में डाला जाता है, सब जगह थोड़ी फैलाते हो, तो कीटाणु फैल जाएंगे, जर्म्स फैल जाएंगे, बीमारियां फैल जाएंगी। इसलिए बहुत समझदार बनो, कोई भी कमी है, कोई भी संस्कार स्वभाव है, वो जमाना नहीं रहा जब बाबा बैठा था साकार में, सुना दिया बच्चे भूल जा, शक्ति दे दिया भूल जा। अभी एक को दोगे दो के हाथ में जाएगा, तीन के हाथ में जाएगा, बात फैल जाएगी। इसलिए मुझे अपने को बदलना है, मुझे बाबा से सच्चा रहना है। मैं हमेशा कहता हूं आप सब पांच प्रकार का फाउंडेशन मजबूत कर लो, बस अपना फाउंडेशन मजबूत है, बिल्डिंग ऊंची बनेगी। फाउंडेशन कमजोर है, बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। अगर आप ऊंची मंजिल बनाने लगो और फाउंडेशन पर ध्यान न हो तो कितने मंजिल तक चढ़ा पाओगे, और थोड़ा सा भी अगर जोर से तूफान आ गया, 2 डिग्री 5 डिग्री भी भूकंप आ गया, तो बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी सेकेंड में। इसलिए कोई भी बिल्डिंग बनाने वाला ये जानता है, इसकी फाउंडेशन जितनी मजबूत और गहरी होगी उतनी इस पर बिल्डिंग स्थायी ठहर सकती है। हमारी ऊंची स्थिति की बिल्डिंग हम बनाने आए हैं, स्थिति हमारी प्रॉपर्टी है, संगम युग पर और कुछ काम आने वाला नहीं है। अंत समय में न पैसा काम आएगा, न पोस्ट पोजिशन काम आएगी, न साथी और मित्र मंडली काम आएगी, क्या काम आएगा, केवल अपनी स्थिति। बाबा तो है, बाबा तो हमारा रक्षक सहारा अंत तक बनेगा ही, लेकिन अगर स्थिति डगमग हो गई, मन चंचल हो गया, मन के अंदर कोई डिप्रेशन आ गया, तो कौन मदद करेगा, कोई साथ नहीं देगा। इसलिए मुझे अपनी स्थिति का बहुत ख्याल रखना है, कुछ भी हो मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी। बहन मेरा मूड खराब कर दे, मुझे सेवा नहीं दे, मुझे निकाल दे, मुझसे बात नहीं करे, भले नहीं करे, उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपनी स्थिति खराब करके, अपना मूड खराब करके, मैं ज्ञान और योग से अपने को वंचित न करूं। पहला फाउंडेशन है, जितना हो सके ज्ञान और योग से मनन करो, चिंतन करो, लेखन करो, अपनी इस युवा एनर्जी को यूज करो, खूब अच्छी अच्छी सकारात्मक कला के द्वारा, जिसके अंदर लिखने की कला है, भाषण करने की कला है, कोई भी प्रकार की कला है, उस कला को आप अच्छी तरह से मन बुद्धि लगा करके यूज करो, और साथ साथ बाबा की पढ़ाई का गहराई से अध्ययन करो। अगर ज्ञान स्वरूप में आ गया तो उसकी सबसे पहली निशानी यही है, बंधन खत्म होते जाएंगे। ज्ञानी तो आत्मा किसी भी बंधन में बंधती नहीं है। और ये समय ऐसा चल रहा है, ध्यान देना, ये हमारे पिछले बंधनों को काटने का समय, निर्बंधन बनकर के, पावन बनकर के वापस जाने का समय है। और इस समय में अगर मैंने कहीं पर भी प्रभावित होकर के, कोई ने प्रशंसा की उस पर प्रभावित हो गए, कोई ने ग्लानी की उसकी निंदा करना शुरू कर दी, कोई भी हिसाब किताब नहीं बनाना। दोनों प्रकार से हिसाब किताब बनता है, किसी की अगर आप नफरत कर लो, बैर करने लगो, बात नहीं करो तो भी हिसाब किताब बन रहा है, क्योंकि योग में बैठोगे तो याद आएगा। कहते हैं जो बहुत नजदीक होता है उसकी याद दिल में रहती है, और जो दूर होता है, दुश्मन होता है, उसके दिमाग में रहती है। याद तो रहती ही है, इसलिए ध्यान रखो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। इतनी गहरी दोस्ती किसी से ना हो जाए जो उसके बिना मैं रह नहीं सकूं, उसको सुनाए बिना नहीं रह सकूं, वो भी एक हिसाब किताब बन जाता है, प्रभावित हो गई आत्मा। और एकदम किसी से नफरत हो गई, घृणा हो गई, बात नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, सामने आ जाए तो भी हिसाब किताब बन रहा है, क्योंकि उसका चिंतन चल रहा है। तो ध्यान देना, अभी अंतिम समय में मेरा कोई से हिसाब किताब ना बने। ज्ञानी तू आत्मा वही है जो नया हिसाब किताब क्रिएट न करे, और पुराने को ज्ञान और योग की शक्ति से, बाबा की मदद से चुकतू करता जाए। चुकतू करने का समय है, हो गया, चलो कोई बात आ गई, ये पेपर आ गया, डरो नहीं, घबराओ नहीं, धैर्यता से बाबा को सुना करके, बाबा के कमरे में जाके शक्ति लेकर के, जितना आप लाइट रहेंगे ना उतना वो पेपर का हल आपको दिखाई देगा। एक भाई ने लिखा है कि बाबा की टचिंग आ रही है, कैसे पता चलेगा? अगर आपका मन भारी भारी है, मन के अंदर बहुत सारी उलझने हैं, बाबा कितना भी टच करे आप कैच ही नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी बात है, बहुत जल्दी अधैर्य नहीं होना, बहुत जल्दी उतावले नहीं हो जाओ, सब ठीक होने वाला है, सब ठीक हो जाएगा, ये पेपर आया है, पार हो जाएगा। कोई नई बात नहीं आई, कलप कलप मैंने पार की है, ये है ज्ञान, ये है समझ। थोड़ा सा धैर्यता से बाबा के पास जाके, योग में बैठ करके, बाबा से रूह रियान करके, कुछ नहीं संकल्प करो, क्या करो, बाबा की दृष्टि को सिर्फ देखो, देखते रहो। है गीत है ना, मैं बाबा तुझे देखता रहूं, देखते रहो, देखते रहो, और कोई संकल्प आने नहीं दो, सुनाओ भी नहीं दिल बात, वो दिल की बात तो जानता है ना, सुनाओगे क्या, और ये मुख की बात तो सुनता ही नहीं है। जब दिल की बात जानता तो उसका वर्णन भी क्या करूं मैं बाबा के आगे। बैठ गए बाबा को देख रहे हैं, बाबा शक्ति दे रहा है, सकास दे रहा है, आप 5 मिनट भी बैठ गए उस स्थिति में, आप हल मिल जाएगा आपको, आपको उसको उत्तर दिखाई देगा कि बाबा ऐसा मुझे कह रहा है। बाबा के आगे एकदम बहुत दिल से, शांति से, धैर्यता से बैठ करके दृष्टि लो, सकास लो, अनुभव करो कि बाबा वतन से इस तन में आ गया है और मुझे दृष्टि दे रहा है, मुझे शक्ति दे रहा है। अगर इस अनुभव को आप बढ़ा लेंगे ना, तो आप कई प्रकार से मुक्त हो जाएंगे, कई बंधनों से, कई बातों से छूट जाएंगे। मैं तो ये विधि अपनाता हूं, कई बातें आती हैं हमारे सामने भी, सबके सामने, बैठ जाओ जाके बाबा के आगे, बाबा अपने आप उत्तर दे देते हैं, सब उत्तर मिल जाता है। अभी तो ऐसे ऐसे उत्तर मिल जाते हैं जैसे बाबा यज्ञ को चला रहा है, बड़े डायरेक्शन देते नहीं है, लेकिन जब बैठते हैं जाकर के, निट संकल्प होकर के ऐसे बैठ गए, बाबा को देख रहे हैं, अपने आप ऐसा आता है, ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, जैसे सब डायरेक्शन बाबा से ही मिल रहे। तो बाबा अपना यज्ञ चला रहा है, अपने बच्चों को चला रहा है, अपनी पालना कर रहा है, सब कार्य कर रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देता, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है। कोई दादियां बड़ी नहीं रही, बड़े भाई सब देख रहे हो आप, लेकिन बाबा अपना कितना बृहद का कार्य करा रहा, कैसे करा रहा है। जानकी दादी कहती है प्रभु लीला चल रही है, करण करावन हार प्रभु की लीला चल रही है, अब उस लीला में हम भी शामिल हो जाएं, हम भी अपना भाग्य बना लें। तो सबसे पहला ध्यान रखना कि ज्ञान योग को अच्छी तरह से कूट कूट के मजबूत करो, और कुछ नहीं करो। अगर 24 घंटे में एक घंटा इस स्थिति में बैठ जाओ, मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं, बैठ गया ऐसे कुछ नहीं सोचू, एकदम निर्संकल्प होकर के बाबा के कमरे में एकांत में बैठ करके बाबा के साथ मिलन मनाओ, शक्ति लो, ऐसा योग करो जो ऐसे लगे हमारे विकर्म दग्ध हो गए, संस्कार चेंज हो जाएंगे, स्वप्न शुद्ध हो जाएंगे। संस्कार चेंज हुए उसकी निशानी तो यही होगी ना, हमारे स्वप्न अच्छे हो जाएंगे, हमारे विचार परिवर्तन हो जाएंगे, जो कल हमारे अंदर उत्तेजनाएं थी, आवेग था, आवेश था, वो सब समाप्त हो जाएगा, शांत हो गई आत्मा, इंद्रियां शीतल हो गई, उत्तेजनाएं समाप्त हो गई। लेकिन वैसा योग है, करते हो? तेरे मेरे में अब जाने का समय नहीं है, मैं तो बहुत ध्यान रखता हूं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे कोई सुनाए भी ना, मैं कहता मेरे काम का ही नहीं भाई, राम राम, मैं नहीं देखता इस बात को, क्यों किसी के चक्कर में जाते हो? ऐसी तपस्या करो जो सब समस्याएं खत्म हो जाए। एक घंटा अगर 24 घंटे में तपस्वी मूर्त होकर के बैठ जाओ, बिल्कुल आसन लगा करके, एकदम शरीर से भी नहीं हिलना, चार प्रकार की एकाग्रता बाबा ने सुनाई है योग में, एक तन की भी एकाग्रता है, ऐसे नहीं बार बार टांगे बदल रहे हैं, आंखें इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं, तन की भी एकाग्रता है, फिर मन की भी एकाग्रता है, विचार भी एक की तरफ है, शून्य नहीं है, जड़ता नहीं है, अनुभव है, बुद्धि भी स्थिर है, एकाग्र है, एक को ही देख रही है और कुछ नहीं देखती, बुद्धि देख रही है, मन अनुभव कर रहा है, और भावनाएं बस उसके तरफ है, दिल उसकी तरफ है, बस बाबा मिला है। तो मन, बुद्धि, भावनाएं, तन, अगर ये चारों प्रकार की एकाग्रता के साथ आप तपस्या करो, आपका फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाएगा, जो आपने कई प्रकार के प्रश्न लिखे हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। देह अभिमान प्रश्नों की जड़ है, सब विकारों की जड़ देह अभिमान है, और अगर हम देह अभिमानी स्थिति को बढ़ा लें तो देह अभिमान जनित जितनी भी समस्याएं वो सब हल हो जाएंगे। जितने विकार उत्पन्न हुए हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, आसक्तियां हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है, जितने भी प्रकार हैं बाल बच्चे सहित, सबकी जड़ कहाँ है? बॉडी कॉन्शियस। और अगर मैंने पक्का कह लिया मैं आत्मा हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, तपस्या के रूप में एक घंटा तपस्या की, तो ये सब प्रॉब्लम खत्म। लेकिन ये ज्ञान योग का फाउंडेशन, लक्ष्य रखो, इस भट्टी से संकल्प लेके जाओ, कोई भी बात आपको लगे गलत है उसका वर्णन चिंतन करने के बजाय चलो हम बैठते हैं चार पांच कुमार मिल करके तपस्या करेंगे, योग का प्रयोग करेंगे, सुनाने की भी जरूरत नहीं कि मैं ये ऐसा कर रहा हूं। हम लोग किसी को नहीं बताते, हमारी दादी जी पता क्या करती थी, जब कोई ऐसी यज्ञ के ऊपर प्रॉब्लम आई, कहीं से भी कोई समस्या आई, 15-20 लोगों को उठ कहती थी आज सुबह 2 बजे, 1:30 बजे उठना, 2 बजे से 5 बजे तक योग करेंगे, बताती नहीं थी क्या है। आज 3 घंटे की तपस्या भट्टी है अमृत वेले, 1:30 बजे उठा देती थी सबको, और खुद आके आगे बैठ जाती थी, कमेंट्री थोड़ा दिया, बैठ गई सामने और हम लोगों को बोला बस 3 घंटा योग करके जाओ, बहुत पावरफुल योग करो। दूसरे दिन कहती थी जो बात आई खत्म हो गई, बाद में बताती थी, किसी के आगे वर्णन चिंतन करके। आज जो यज्ञ इतना बढ़ा है, आज जो इतना विस्तार हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है, कितने तूफान, कितने सरकार के, व्यक्तियों के, प्रकृति के, हर प्रकार के विघ्न आए होंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं दिन दूनी रात चौगुनी जो वृद्धि हुई है हमारी दादियों की, वो तपस्या से हुई है, बहुत तपस्या। कोई विघ्न आया, एक बार की बात बताता हूं, प्रैक्टिकल का उदाहरण देता हूं। हमारे पास एक प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति थे उस समय, वेंकट रमन जी, सुना होगा नाम, उनका प्रोग्राम बनाया गया कि एक कॉन्फ्रेंस था, एक प्रोग्राम में वो आए मधुबन। अब आए कैसे, नीचे से ऊपर तक सारे सरकारी अधिकारी विरोध करे, कलेक्टर से लेकर के सब एंटी, राजस्थान वाले उसको छुट्टी नहीं दे, बहुत मुश्किल, और उसकी दिल भी थी और हमारा निमंत्रण भी था। दादी जानकी ने कमरा बंद कर लिया। बहुत समय की बात है, दादी थी बड़ी दादी, पूरी रात तपस्या की और ऐसा वायुमंडल बनाया। जब उसने प्रोग्राम बना लिया कि मुझे माउंट आबू जाना ही है, यहां पर हेलीकॉप्टर पोलो ग्राउंड में माउंट आबू में उतरा, उस समय शांतिवन नहीं था, माउंट आबू में पोलो ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतरा तो जितने अधिकारी थे उन्होंने सब ने सर्किट हाउस में उसके नहाने का, फ्रेश होने का, रेस्ट करने का, दिलवाड़ा घुमाने का बहुत सारा प्रोग्राम बना के रखा था। वो हेलीकॉप्टर से उतरते ही बोलता है कि मैं केवल ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम के लिए आया हूं, मुझे कहीं नहीं जाना है। सीधा ही गाड़ी में बैठा पांडव भवन आया, उस समय ओम शांति भवन भी नहीं था। पांडव भवन में आया, प्रोग्राम किया, 3-4 घंटे रहा, उससे फैमिली टाइप मिला सबसे, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई बंधन नहीं, उपराष्ट्रपति। और 3-4 घंटे रह करके मिल करके और सीधा ही वो जितने प्रोग्राम उनके प्रोटोकॉल के बने थे सब कैंसिल कर दिए, कहीं नहीं जाना, सीधा ही हेलीकॉप्टर पर बैठा वापस चला गया। बाबा आए 3-4 दिन के बाद, बाबा ने बताया, बच्ची पता है तुमको क्या हुआ था, ऐसा कैसे हो गया? अरे एक बच्ची की तपस्या का बल था, वो उस तपस्या के बल से इतना सुंदर ओरा बना हुआ था जो उस वो आत्मा उस ओरे से बाहर जा ही नहीं सकती थी, कहीं नहीं जा सकती थी। ये योग का प्रयोग है, ऐसी तपस्या है, एक संकल्प में स्थित, ये विघ्न आया, वो विघ्न आया, इविल आई, फलान आई, इसके पास जाऊं, उसके पास जाऊं, नहीं सकती है तो बाबा कहेगा जाओ, अगर शक्ति नहीं है किसी के पास, कमजोर है तो दवाई डॉक्टर के पास लेनी पड़ेगी ना, अगर शक्ति है तो योग का प्रयोग करो, मिलके करो, वर्णन चिंतन नहीं करो। लेकिन अगर शक्ति नहीं है तो जरूर ओझा के पास, झाड़ फूक करने वाले तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो और परेशान हो जाओगे। अगर शक्ति है योग की तो योग की शक्ति तो चमत्कार है, कमाल कर सकती है, सब कुछ कर सकते है, लेकिन वैसा योग लग ही नहीं रहा है ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अब ऐसे योग की तपस्या को अगर हम सब बढ़ा दें और पवित्र कुमार कमाल कर सकते हैं। आप सब समझो हम योगी हैं, तपस्वी हैं। एक बार की बात मैं आपको सुनाता हूं, दीदी ने मेरे से एक प्रश्न किया, दीदी मनमोहिनी ने, तुम ब्रह्मा कुमार हो? हमने कहा हाँ जी, बहुत प्यार से बोला, बोले बस ब्रह्मा कुमार हो? अरे ब्रह्मा कुमार तो बहुत सारे हैं, जिसने सफेद ड्रेस पहन ली, बैज पहन लिया, वो ब्रह्मा कुमार है। मैं ब्रह्मा कुमार नहीं देखना चाहता, तो मैं तपस्वी कुमार देखना चाहता। आप समझो हम सब तपस्वी कुमार हैं, जहां पर भी कोई समस्या हो तपस्या के द्वारा ठीक करनी है। अब वास्तु है, वास्तु की ऐसी बात है, ये तो एक विज्ञान है, अगर गलत दिशाओं में बना हुआ है, कोई ऐसे स्थान पर बाथरूम है, ऐसे स्थान पर गेट है जहां पर हवा पानी कई प्रकार की चीजें वास्तु को देख करके बनाई जाती हैं, लेकिन अगर गलत बना है तो वहां उस स्थान पर रहने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, कई प्रकार की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऑक्सीजन ठीक नहीं मिलती, दिशाएं अपनी ओर खींच रही हैं, जिधर आपके पैर हैं वो दिशा हमारी ठीक नहीं है, तो कई बातें वास्तु के हिसाब से विज्ञान है, इसके कारण हमको ध्यान पर रखनी चाहिए। अंधश्रद्धा नहीं है ये, ये कोई हमारी ऐसी बात नहीं है जिसके कारण हम कहें ये तो ज्ञान के विपरीत बात है, विज्ञान भी तो एक ज्ञान है ना, उसको समझ करके अगर कुछ गलत है बताया जा रहा है कि इस दिशा में हमारा मुंह होना चाहिए, इस दिशा में पैर होना चाहिए, इस दिशा में पानी होना चाहिए, इस दिशा में गटर होना चाहिए, इस दिशा में भंडारा होना चाहिए, तो उसके अनुसार अगर हम बनाते हैं तो निर्विघ्न रहते हैं, कई छोटी छोटी प्रॉब्लम नहीं आती हैं, प्रकृति का एक नियम है। तो नियम में चलने का, हम लोगों को हर बात में नियम से चलना ठीक है, बाकी कोई बना हुआ मकान तोड़ करके बनाना, ये करना वो करना, थोड़ा बहुत परिवर्तन कभी करना पड़ता है तो कर लेना चाहिए, मुझे नहीं डिस्टर्ब नहीं हो, हम तो योगी लोग हैं, ऐसे लोग हैं, अरे योग लग नहीं रहा है, योग क्या करोगे, योग योग के लिए तो बहुत शुद्धता, बहुत पवित्रता, बहुत शांति, बहुत अच्छे विचार चाहिए, तब तो योग लगता है। इसलिए कुछ एक बातें स्थूल अपनानी पड़ती हैं, और अगर नहीं तो हम सब मिलकर के ऐसी भट्टी, ऐसी तपस्या करें तो अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती हैं तो सहज क्रॉस हो जाती हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के प्रश्नों में ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये करना वो करना, वो बहन जी ऐसी कर रही, वो ऐसी कर रही, वो ऐसी कर रही, अरे करने वाले कर रहे हैं, हम क्यों अपना माथा खराब करें। मेरा तो ये रहता है वो कर रहा है और हम सोच रहे हैं, हम वर्णन कर रहे हैं, करने वाला तो हो सकता सुधर जाए किसी प्रकार से, और हम उस बात को वर्णन करके फैला करके उसका बोझ अपने ऊपर क्यों लें। इसलिए बहुत ध्यान रखो, कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे अपने माइंड को स्थिर रखना है, एकाग्र रखना है, मुझे अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, सब बाबा ठीक करेगा। बाबा का ज्ञान और योग अगर फाउंडेशन किसी ने पक्का कर लिया है तो बहुत सारी बातों से स्वतः मुक्त हो जाएगा, सब समस्याएं उसकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। और दूसरा फाउंडेशन है अनुभव। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। सुनी सुनाई बातें हमने सुना दी, आपने सुन लिया, आपने दूसरों को सुना दिया, दूसरे ने तीसरे को सुना दिया, जो सुनाया गया उसका अनुभव मैंने किया है, जो कुछ बाबा ने कहा है। एक बार बाबा की मुरली चली थी, बच्चे अनुभव करने के लिए जिद करो, जिद, बैठ जाओ, खाना छोड़ दो, तपस्या करो, मुझे अनुभव करके उठना है। अगर मान लो बाबा कहता है बच्चे सूक्ष्म मतन है, अब सूक्ष्म मतन के बारे में आप लोगों ने कई प्रश्न दिए हैं, संदेशियां जाती हैं, ट्रांस में जाती हैं, बाबा भी खंडन कर रहा है, काट रहा है, छोड़ो इनमें ज्ञान योग नहीं है, क्योंकि कई बार संदेशियां भी अगर यथार्थ कैचिंग पावर नहीं है तो गलत संदेश सुना देती है। बहुत कैचिंग पावर चाहिए। एक सूक्ष्म वतन है, लाइट का वतन है, मूवी की भाषा है, हर एक की कैचिंग पावर अपनी अपनी है। इसलिए क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है इस बात का, लेकिन समझने की जरूरत है। अगर ज्ञान योग की श्रीमत नहीं है, कोई कहे मेरे में मम्मा आ गई, मेरे में बाबा आ गया, मेरा ऐसा पार्ट चल रहा है, कई जगह पर आत्माएं भी मम्मा बाबा बन के अपना पार्ट प्ले कर रही है। होती हैं कोई अच्छी आत्माएं भी होती, सब खराब आत्माएं नहीं होती, लेकिन जन्म जल्दी नहीं मिलता, कोई कारण से शरीर छोड़ देते तो वो आत्माएं सुख नहीं दे, दुख नहीं देती, लेकिन बाबा मम्मा भी बन करके कई आत्माओं को भ्रमित कर देती है। इसलिए बहुत ध्यान रखना, समझदार वो है जो बाबा में संपूर्ण निश्चय और अनुभव की अथॉरिटी बन जाए। क्या अनुभव करना, मैं एक लाइट हूं। कभी कभी मैं ये सोचता हूं, कौन सी चीज है जो आत्मा और शरीर को बांधे हुए है, एक मिनट के लिए अलग नहीं होती, डिटैच नहीं होती, बार बार ध्यान किया और फिर फंस गई आके, ऐसे कौन से संस्कार हैं जो गोंद का काम करें बीच में, डिटैच होकर के देखो, होते हो,
प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए।
तो अभी तक जिस बात का अनुभव नहीं किया है, शरीरी स्थिति का अनुभव नहीं किया है, करके देखो, कब करोगे, सदा सोचो अब नहीं तो कब नहीं। अगर आपने अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं किया है तो कब करेंगे। भगवान मिला, पढ़ा रहा है, पालना दे रहा है, इतनी ऊंची श्रेष्ठ जीवन दी है, फिर भी अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं। गोप गोपियां कौन थे, मैं नहीं हूं क्या, है किया है किसी ने अति इंद्रिय सुख का अनुभव, बिल्कुल इंद्रियों का सुख नहीं खींचेगा, एकदम अति इंद्रिय, इंद्रियों से परे वाला सुख, परमानंद की अनुभूति। योगी वो है जो परमानंद की अनुभूति करता है। गोप गोपियां तो अति इंद्रिय सुख का करती, लेकिन परमानंद, प्रभु का मिलन, उसमें आनंद जो है, करके देख लो। अगर नहीं हुआ है तो आप करो, कभी सूक्ष्म वतन का, कभी मूल वतन का, कभी बाबा के साथ सैर करने का, कभी वैकुंठ में जाकर के सतयुगी देवताओं की रास मंडली देखने का, ये अपनी बुद्धि बल से ही कर सकते हो ना। लेकिन अगर बुद्धि इधर उधर की व्यर्थ में लगी हुई है, तेरे मेरे में लगी हुई है, तो कैसे करोगे? समय निकालो इसके लिए, कुछ समय दो, अपने को कुछ समय दो, अपने आप ये सब अनुभव होंगे और इतने अच्छे अनुभव होंगे जो आप अथॉरिटी बन जाएंगे। जो बोलेंगे वो ऐसे लगेगा मैं तो अथॉरिटी से बोल रहा हूं। निश्चय का बल चाहिए, निश्चय तीसरा फाउंडेशन है। कुछ भी हो जाए निश्चय को कोई हिला नहीं सकता। मुझे निश्चय है कि संगम का समय है, भगवान का कार्य चल रहा है, नई दुनिया की स्थापना होनी है, इस कलयुग को जाना है। इसलिए इस निश्चय बुद्धि से विजय, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो। संगम का बहुत कल्याणकारी समय है। मुझ आत्मा का कहीं भी अकल्याण नहीं हो सकता। मैं बाबा का कल्याणकारी बाप का बच्चा हूं, कल्याणकारी युग है, हर बात में मेरे कल्याण है। अगर अकल्याण की सीन भी आ रही है और मैं मर्यादा की लकीर के अंदर हूं तो मेरा अकल्याण नहीं हो सकता। निश्चय बुद्धि विजयंती, अपने आत्मविश्वास को हिलाओ नहीं, छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त नहीं हो। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। निश्चय की विजय है। और चौथा है सत्यता की अथॉरिटी। हेरा फेरी बोल के क्या करना है? जो हूं जैसा हूं तेरा हूं, अंदर एक बाहर दूसरा नहीं हूं, कहूं योगी और हूं ढोंगी, कौन विश्वास करेगा? इसलिए जो हूं जैसा हूं बाबा, मैं आपका सच्चा बच्चा हूं। तो सत्यता की अथॉरिटी बन जाए उसका अनुभव चाहिए। तो ज्ञान योग का फाउंडेशन, निश्चय का फाउंडेशन, अनुभव का फाउंडेशन, सत्यता का फाउंडेशन, और साथ साथ जरूरी है प्योरिटी का फाउंडेशन। पवित्रता के फाउंडेशन को कोई हिला न पाए। क्यों इतनी सारी परहेज कर रहे हैं, क्यों इतने सारे बंधन हैं? हमारा बंधन तो इसीलिए है कि आत्मा पावन बन जाए, बाकी कुछ बंधन नहीं। अब भाभियों के हाथ का खाना है भाई, भले खाओ, मैं मना थोड़ी करूंगा। लेकिन एक भाभी की कहानी सुना देता हूं मैं। मधुबन में एक बड़ा बहुत योगी भाई था, दादियों का भंडारा चलाता था, भोजन बनाता था, 2 बजे उठ के योग करता था, बड़ा अच्छा था। हम लोगों को कभी कभी आता था, यार ये तो बहुत पुरुषार्थी आत्मा है। अब उस भाभी ने, उसकी एक भाभी थी बॉम्बे में रहती थी, उसने इसको फंसाने के लिए ऐसा प्रयत्न किया, ज्ञान में चली। पहले थोड़े दिन मुरली सुनना शुरू किया, ज्ञान में आई, मधुबन में आई, थोड़ा थोड़ा होता ना, किसी का लौकिक से थोड़ी अटैच होती है बुद्धि, तो समझाए तो ज्ञान में चल गई, मधुबन में आई, बड़े प्यार से उसको कहा तुम चलो घर, घर ले गई, उसने समझाए तो ज्ञान में चल गई। और ज्ञान में धीरे धीरे उसने अपने हाथ से उसको बनाना शुरू किया, खिलाना शुरू किया, और धीरे धीरे उसकी शादी करा दी। अभी उसको एक बच्चा हुआ, अभी तीनों के तीनों ज्ञान में आ रहे हैं। लेकिन जो इतनी अच्छी जीवन थी, पवित्र जीवन थी, कितना बेचारा दुखी हुआ जा करके, एक भाभी ने उसको बंधन में बांध करके उसको माया जाल में फंसा दिया और खिला करके, सिर्फ भोजन खिला करके। तो अगर आप पक्के हो सकते हो, बच सकते हो, कोई युक्ति से मुक्ति पा सकते हो तो युक्ति रचो। और अगर लगता ही है भाई इसके बिना बहुत नुकसान हो रहा है, तो बहुत डिसर्विस हो रही है, तो भले झुको लेकिन योग युक्त होकर फिर भोजन करो। बहुत योग में भोग लगा करके, मर्यादा का पालन करते हुए, समझा के, प्यार से खाओ, लेकिन टकराव की स्थिति नहीं पैदा करना, ध्यान रखना। तो एक प्योरिटी का फाउंडेशन बहुत जरूरी है। जहां पर भी ये हिल गया वहां ये सारे चारों पहिया टूट जाएंगे, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। अब उसको मजबूत करने के लिए हमने आपको पहले भी कहा, अपनी एनर्जी को अच्छी तरह से यूज करो। इस एनर्जी को, अपने मन बुद्धि को फ्री नहीं छोड़ो। ऐसी नहीं आदत बन गई है असली चीजें देखने की, कल लिखा था ना किसी ने, वीडियो देखने की आदत है, क्या करूं? अब वीडियो माना गंदी बातें आएंगी कि मोबाइल के वीडियो में, इंटरनेट के वीडियो में क्या है। बाबा ने मुझे तो उतना ही सिखाया जितना हमें पढ़ाई और जरूरी है सेवा के लिए, बाकी तो कुछ आता नहीं है। जितना बाबा को सेवा के लिए जरूरी है वो सब कुछ आता है, इंटरनेट भी आता है, कंप्यूटर भी आता है, सेव करना, फॉरवर्ड करना, भेजना, ईमेल करना, सब आता है, लेकिन दूसरी चीजें में नहीं आता है। बुद्धू रखा बाबा ने, आप लोग बुद्धिमान हैं, आप देखते होंगे, मुझे तो पता नहीं कैसे देखते हैं, क्या खोलते हैं। ध्यान रखो, जो हमारे विचारों को अश्लील बनाने वाली चीजें हैं, जो हमारे विचारों को प्रभावित करने वाली चीजें हैं, न देखना है, न सुनना है, न और ऐसी तामसिक तेज गर्म चीजें खानी है। कई बार ऐसा गर्म दूध पी लेते हैं, गर्म गर्म खाना खा लेते हैं, या इतनी तेज मिर्च मसाले चटपटी अटपटी चीजें खा लेते हैं जो हमारे इंद्रियों को उत्तेजित कर देती हैं, हमारी वायु को दूषित कर देती, और गलत स्वप्न, गलत प्रकार का रात्रि में चिंतन चल जाता है, भोजन का भी बहुत असर पड़ता है। इसलिए हम बहुत सादा जीवन, उच्च विचार, जितना अपनी सादगी पूर्ण जीवन हो, सादगी पूर्ण खान पान हो, सादगी पूर्ण, कोई दिखावा नहीं, कोई पहनावा नहीं, कोई पैंट सूट नहीं, कोई ऐसा नहीं दिखावा है, फैशन है बालों का, चप्पल का, जूते का, कल मूछ की बात चली, कहानी आपको बताई थी, कपड़ों की भी सुनाऊं आपको, कपड़ों की कहानी भी है। हम लोग मधुबन में जब आए ना, तो हम सबको पैंट सूट ही मिलता था, और पैंट सूट ऐसा अच्छा मिलता था, जब मैं पहली पहली बार 71 में आया मधुबन में, तो जाने लगा एक मास के बाद घर में, तो संतरी दादी ने हमको कहा तुम अपनी अटैची ले आ। मैं, दादी अटैची में मेरे कुछ नहीं है, एक दो जोड़ी गांव का कपड़ा है। बोली नहीं नहीं तुम ले आओ इधर, पता नहीं क्यों मंगा रहे। उसमें लोहे की अटैची होती थी, ये नहीं होती थी आजकल की जैसी, लोहे की टैंक जैसी थी। तो मैं जब लेके डरते डरते गया, हमने कहा क्यों, पता नहीं क्यों पूछ रही है। तो क्या किया, 8 ड्रेस बहुत अच्छी हांगकांग की आई हुई पैंट और बुशर्ट उसके अंदर सजा के, फिर मुझे कहती है तुम ले जाओ। मैं, दीदी दादी ये क्या करूंगा। बोला इसको पहनना, इसको पहन करके अपने गांव में घूमना, अपने पिताजी को दिखाना, तुमको जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। तो उस समय मधुबन में जो भी रहते थे, आते थे, सब पैंट सूट पहनते थे। पहले पहले कलर ड्रेस थी सारी, कोई व्हाइट भाइयों की नहीं थी, बहनों की तो मर्यादित अपनी साड़ी ब्लाउज था। तो एक दिन क्या हुआ, कारपेंट्री डिपार्टमेंट में अपने समर्पित भाई काम कर रहे थे, और ये पैंट और रंगीन ड्रेस पहनी हुई थी। तो कुछ मारवाड़ी माताएं इस यूपी बिहार साइड से आई थी, तो उनके पास खाना बच गया था। तो बचा हुआ खाना वो समझे लोग मजदूर होंगे, कलर ड्रेस वाले, वो दे आई जा करके, अलावा आप लोग मिलके खा लेना। तो एक दिन तो भाई कुछ नहीं बोले, समर्पित भाई थे। दूसरे दिन फिर वही हाल हुआ, ऐसे ही रोज होने लगा। तो उनको बड़ा गुस्सा आया अंदर अंदर कि हम लोग समर्पित हैं, हम कोई खाने के भूखे हैं क्या, और ये बचा खुचा खाना ये माताएं मेरे को क्यों दे जाती। तो उन्होंने दादी को जाके कंप्लेन किया, बड़ी दादी और दीदी, दादी ये लोग हमको ऐसा बचा खचा खाना माताएं रास्ते का और दे के जाती हैं और कहती खा लेना, ये हमको मजदूर समझती हैं। दादी तुमको मजदूर क्यों समझती हैं, मजदूर और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं हो क्या। तो कहती क्या अंतर है, वही ड्रेस वो पहनते, वही ड्रेस ये पहनते। बात दादी को इतना लग गई बात, मेरे समर्पित बच्चों को मजदूर समझती हैं, आज से लेके कोई पैंट सूट नहीं पहनेगा। अब वही क्लासेज मेरी हम लोगों की, दीदी कहे दादी सफेद ड्रेस में तो बड़े खराब करेंगे कपड़े, अभी तो 4 जोड़ी से चल जाता है, फिर 6 जोड़ी देना पड़ेगा। भाई भंडारे में काम करने वाले अगर सफेद ड्रेस पहनेंगे तो गंदे हो जाएंगे ना, कारपेंटरी का काम करने वाले सफेद ड्रेस पहनेंगे तो खराब। दादी कहे जाए 6 नहीं मैं 8 दूंगी इनको, लेकिन एक को भी आज से कलर ड्रेस नहीं पहनने दूंगी। मधुबन वाले जो पहनते थे सबका सरेंडर करा दिया, वापस करो, सब वापस करो, अपनी अपनी पैंट खाली करो सब, न कोई भी पैंट सूट नहीं रख सकता है, चाहे देश जाओ चाहे विदेश जाओ, कोई को भी इस ड्रेस को उतार के नहीं जाना है। सिर्फ एक जैकेट की छुट्टी मिली, वो भी बहुत दिन के बाद, जैकेट भले पहनो ऊपर। तो ड्रामा अनुसार ये सब जो नियम बने हैं, ये जो मर्यादाएं बनी हैं, ये हमारी प्योरिटी के लिए हैं, हमारी पवित्र जीवन के लिए हैं, इसलिए कोई भी नियम मर्यादाओं को बंधन नहीं समझना, अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाओ। बाकी एक प्रश्न जो हमारी दादी ने कल उत्तर नहीं दिया था, आपने पूछा था, लास्ट मैं बता के पूरा करूंगा, उसमें भी एक कहानी आपको सुनाऊंगा जी। क्या क्या बोले, गए ना लेकर के गए, पहली बार एक महीने के बाद जाना पड़ा था, क्योंकि सदा के लिए रखने के लिए तो छुट्टी चाहिए ना, माँ बाप की चिट्ठी चाहिए। तो उनको ये था कि ये जाएगा तो ऐसा कोई नहीं समझे कि ये लोग गरीब हैं, संस्था टूट जाए, पता नहीं क्या संस्था में है, मिलता है या नहीं मिलता है। तो बहुत युक्ति से हमको कहा था कि ये सब सजा के ले जाओ, रोज पहनना, दिखाना कि वहां पर कोई कमी नहीं है, वहां सब कुछ है, तो तुम्हारे पिताजी चिट्ठी सहज दे देंगे छुट्टी, समझा, इसलिए भेजा था। हम तो एक महीना के लिए नहीं, एक साल के लिए भेजा था, क्योंकि मैं 9th में पढ़ता था। तो दादी ने कहा, अरे तुम 15 साल का 9th में पढ़ता है, मैं तुमको कैसे रखूंगी। और मैंने कहा, दादी अभी विनाश होने वाला है, मुझे तो यही सेवा करनी है। तो दादी ने बहुत प्यार से समझा के कहा कि ठीक है, भले सेवा करना, एक साल के लिए जाके पढ़ करके फिर आओ, और फिर पिताजी की चिट्ठी लेके आना, ऐसे नहीं आना, क्योंकि वो जानती थी पिताजी इसके चिट्ठी नहीं देंगे। पिताजी, 3 भाई में मैं इकलौता बेटा, और इकलौते बेटे को कौन छुट्टी देगा भाई, 3 का घर है, दुकान है, परिवार है, सारा संभालने वाला वारिस एक। तो दादी को लग रहा था इसको छुट्टी नहीं मिलेगी। जब मैंने पिताजी को ये बात कही तो उस तो इतना नशा था उनको, तो अरे विनाश होने वाला है, मेरे बेटे अगर लग गए तो मैं भी सरेंडर हो जाऊंगा। तो उन्होंने बड़े प्यार से पत्र लिखा, दादी ये तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, भगवान सृष्टि पर आया, उसकी सेवा में अगर मेरा एक बेटा लगेगा तो आगे चल के हम लोगों को भी चांस मिले। और सचमुच उनको मिला था, वो भी समर्पित हो गए हमारे बाद। तो ये एक कहानी थी, बाकी मैं एक प्रश्न की बात सुना रहा था, क्योंकि 9:45 तक बोला गया था, मैं 5 मिनट में पूरा करूंगा। वो ये थी कि आपने पूछा था संतुष्टता का सर्टिफिकेट कैसे ले, कल था ना प्रश्न। एक दिन अव्यक्त बाबा मधुबन में आए थे, बहुत अच्छी मुरली चलाई संतुष्टता पर। आप देखेंगे अव्यक्त बाबा की मुरलियों में संतुष्टता पर हर वर्ष मुरली चली है एक। तो उस समय बाबा ने मुरली चलाई और 3 सर्टिफिकेट लेने के लिए बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। पहला सर्टिफिकेट स्वयं से लो कि मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूं, और उसके लिए संतुष्टता मनमानी वाली नहीं, ऐसे नहीं जिससे पूछा जाए आप संतुष्ट हो, हाँ जी मैं संतुष्ट हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, मौज कर रहा हूं, क्या हमको कमी है। बाबा कहता ऐसी संतुष्टता नहीं, संतुष्टता माना हर नियम मर्यादा का यथार्थ विधि से पालन कर रहा हूं, उस पालन करते हुए मैं आत्मा अपने आप को प्रसन्नचित समझता हूं, संतुष्ट हूं। तो आप सब ये देखना कि ये सर्टिफिकेट मैंने लिया है, दूसरे मेरे से संतुष्ट हैं वो तो बात की बात है, मैं दूसरों से संतुष्ट हूं भी बात की बात है, लेकिन क्या मैं आत्मा बाबा की बताई हुई श्रीमत के अनुसार चल करके स्वयं को सर्टिफिकेट दे सकता हूं कि मैं संतुष्ट हूं। मैंने कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, मैं कोई व्यर्थ नहीं सोच रहा हूं, मैं अपना टाइम सफल कर रहा हूं, मेरा कहीं टाइम वेस्ट नहीं जाता, मनी व्यर्थ नहीं जाती, एनर्जी व्यर्थ नहीं जाती, मैं अपने सब बातों में संतुष्ट हूं। व्यर्थ जा रही माना असंतुष्ट हूं। तो एक सर्टिफिकेट स्वयं को देना, और दूसरा सर्टिफिकेट परिवार का चाहिए, और उसमें भी हमारा दैवी परिवार बहुत मुश्किल से सर्टिफिकेट दे देता है, ये बड़ी अच्छी आत्मा है, लेकिन उसके लिए एक ले सकते हो, ऐसा नहीं मुश्किल है। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड, कभी भी आप किसी की बात को तुरंत कट नहीं करो, अंडरलाइन करो, उसकी समझ है, उसकी बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने अनुभव के आधार से कोई बात कह रही है, और आपने उस बात को तुरंत अपनी बुद्धि से कट कर दिया कि राइट नहीं है, वो अपना अपमान फील करेगी, और जब अपना अपमान फील करेगी तो धीरे धीरे आपसे दूरी बढ़ा लेगी, आपसे संतुष्ट नहीं हो सकती हो। बाबा ने हम सबको सम्मान देना सिखाया है। तुरंत कट नहीं करो, समय पर उसकी स्थिति परिस्थिति उसका मूड सबको देखो और देख करके समय पर अपनी राय शुभ चिंतक बनकर के देना है तो दो, लेकिन अगर उसके अहम को चोट पहुंच रही है तो कभी भी अपनी राय नहीं देना। जहां अहम को चोट पहुंचती है वहां आत्मा असंतुष्ट हो जाती है। अहम को चोट पहुंचाना नहीं मुझे, उसका अहंकार अगर बहुत है और आप उसको कोई शिक्षा दोगे बताओगे तो वो आपको दूर करेगी, आपको समीप आने नहीं देगी। इसलिए बाबा एक बात कहता है, सीट को भी सलाम करना सीखो। सीट पर है ना, गद्दी पर है, टीचर है, बड़ी है, पोस्ट पर है, नमस्कार, ठीक हो आप जैसे हो वैसे हो, सीट को भी सलाम करना पड़ता है कई बार। इसलिए कभी भी अपमानजनक कोई भी टिप्पणी मुझे नहीं करनी है, सर्टिफिकेट चाहिए तो। और दूसरी बात एक इसमें और ऐड करता हूं, बोल बहुत मर्यादित और बहुत युक्ति युक्त हों। एक स्लोगन आज ही मैं पढ़ रहा था, पानी अगर मर्यादा तोड़ता है तो विनाश कर देता है, पानी अगर मर्यादा छोड़ता है तो विनाश कर देता है, और वाणी अगर मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश कर देती है। ध्यान रखना, वाणी को मर्यादा युक्त रखना है। जितने टकराव जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं केवल वाणी पर लगाम नहीं है। जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया, जरूरत देखी नहीं, अनुभव किया नहीं किसका क्या असर होगा। अब तीर निकल गया कमान से, अब होगा क्या, नुकसान ही होगा। इसलिए तौल करके बोलो, सोच समझ के बोलो क्या होगा इसका परिणाम, ऐसे नहीं जो आया बोल दिया। हम तो बहुत ध्यान रखते इस बात का, अगर हम देखते हैं कि अगर मैं ये बोलूंगा तो इसको कुछ लग जाएगा खराब, क्यों बोलूं, चुप, मैं जानता हूं ये गलत हो रहा है फिर भी मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे, वो तो मानने वाली नहीं है, समझने वाला नहीं है, मैं अपनी वाणी को क्यों बेकार करूं। गुलजार दादी से बात सीखो, कभी भी दादी कोई को कुछ नहीं कहती, चुप, एनर्जी बचा ली है, भगवान यूज कर रहा है, जानती सब है, रांग है राइट है, नहीं होना चाहिए, लेकिन बोल करके अपनी वाणी को क्यों खराब करूं, क्यों निकाल दूं। तो इसलिए ध्यान रखना वाणी पर बहुत कंट्रोल, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, सब संतुष्ट हो जाएंगे। अधिक बोलने वाला कुछ न कुछ रफ जरूर बोलता है, कुछ न कुछ गलत निकलता है, इसलिए कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सम्मानजनक बोलो, जितना आवश्यक है उतना बोलो बस, बाकी शांत, सर्टिफिकेट संतुष्टता का मिल जाएगा। और तीसरा, बाबा को संतुष्ट करने के लिए, बाबा हमसे संतुष्ट है उसके लिए सच्ची दिल पर साहेब राजी, सच्चाई बाबा को बहुत प्यारी है, हम सच्चे साफ हैं बाबा के आगे, नहीं कुछ छिपा रहे हैं, बाबा प्रसन्न है खुश है। तो ये तीन सर्टिफिकेट लेने हैं। तो बाबा ने मुरली चलाई और बाद में दादी को सामने बुलाया, इधर आओ, बाबा तो बड़े युक्ति से बात करता, बोला बच्ची बताओ तुमसे सब संतुष्ट हैं। अब दादी क्या कहेगी, दादी देखती रही बाबा को, दादी ने कहा बाबा मैं कैसे कहूं मेरे से सब संतुष्ट हैं। बोला संतुष्ट मणियों को तो अष्ट रत्नों में गिना जाएगा, तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट तो होना चाहिए ना। तो दादी मुस्कुराती रही कुछ नहीं बोली, कहता बच्ची बाप सर्टिफिकेट देता है 95% तुमसे सब संतुष्ट है और 5% बाबा माफ कर देगा। 5% अपनी आदतों के कारण असंतुष्ट हैं, अपने कोई संस्कार के कारण, कोई स्वभाव के कारण, अपनी कोई इच्छाओं के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, समझ की कमी के कारण असंतुष्ट हैं, उसकी तुम परवाह नहीं करो। समझ गए मेरी बात को, समझा क्या कह रहा हूं, कि अगर कोई ऐसे हैं आप संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हो ना, आप करो अपनी तरफ से, फिर भी कोई नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, डोंट केयर। तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेकर के विजय माला का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन ये तीनों प्रकार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ओम शांति। चलो अभी 3 मिनट योग करके फिर जाओ, जल्दी क्या है, बैठ जाओ 3 मिनट सभी। बहुत प्यार से बाबा को शुक्रिया, बाबा धन्यवाद, क्योंकि ये आपका अभी भट्टी का लास्ट क्लास है, कल तो मुरली सुन के कई भागेंगे, तो आप सभी बहुत प्यार से बाबा को दिल से धन्यवाद करो।
मन में है तन में है यही।